ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 30वां अध्याय श्लोक नंबर 23। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय शुद्धाय शुद्ध रूप को शांताय अत्यंत शांत रूप को नमः नमस्कार है। स्वनिष्ठया अपने पद पर स्थित रहकर मनसी मन में अपार्थम अर्थहीन विलसत प्रकट होते हुए द्वयाय द्वैत जगत वाले को नमः नमस्कार। जगत दृश्य जगत का स्थान पालन लय संहार उदयेशु तथा उत्पत्ति के लिए गृहीत स्वीकृत माया भौतिक गुण प्रकृति के गुणों के विग्रहाय रूपों को अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब मन आप में स्थिर हो जाता है तो ये द्वैतपूर्ण भौतिक संसार सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप आनंद से भरा हुआ है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में आपका प्रकट होना इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के उद्देश्य से होता है। तात्पर्य शिल ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्त जिसका मन हमेशा भगवान के भक्ति में लगा है इस संसार की असारता को समझता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक कार्य में लगा रहता है किंतु यह अवस्था को अनासक्ति कहते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा है, अनासक्तस्य विषयन यथारम उपयुञ्जत। भक्त सदैव भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त रहता है क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। यह भौतिक जगत को द्वैत कहा जाता है। भक्त जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान के शक्ति के प्राकट्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रकृति के तीन गुणों को बनाए रखने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के विभिन्न रूप धारण करते हैं। इन गुणों से अप्रभावित होकर भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। अंत में निष्कर्ष ये है कि यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते रहते हैं, भौतिक कार्य में संलग्न लगता है, किंतु भलीभांति पता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिक सुख का कोई उपयोग नहीं है। ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा खदामयं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोश हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में प्रचेताओं की प्रार्थना का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत सारे भाग हैं जिसमें कि भगवान की स्तुति की गई है। ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं का वर्णन आता है चौथे स्कंद में। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रार्थनाओं का वर्णन आता है दशम स्कंद में। प्रहलाद महाराज के द्वारा रची हुई प्रार्थना का वर्णन आता है सातवें स्कंद में। जब महान भक्त जो भगवान के तत्व को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति जब भगवान का गुणगान करते हैं, तो उसके द्वारा हम बद्ध जीव भगवान के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। पूर्ण रूप से भगवान को कोई नहीं जान सकता, ब्रह्मा भी नहीं, शिव जी भी नहीं, भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं। और जो वर्णन करने वाले व्यक्ति है वो सीमित हैं। इसीलिए भगवान के तत्व को अचिंत्य कहा जाता है। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब जो चिंतन से परे है, भौतिक बुद्धि पराजित हो जाती, फेल हो जाती जब भगवान के बारे में वर्णन आता है। भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता। चाहे कोई व्यक्ति बड़ा विद्वान हो, संस्कृत पंडित हो, शास्त्र भी पढ़ लिए हो, लेकिन भगवान को नहीं समझ सकते। वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जिसको भगवान कृपा देते हैं और उतना समझ सकता है जितना भगवान समझाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की लीला में, सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत बड़े विद्वान थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे और सब शास्त्रों को जानने वाले थे। बृहस्पति के अवतार माने देवताओं के गुरु, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य भी चैतन्य महाप्रभु को देखकर पहचान नहीं पाए। पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर बेहोश हो गए। उनके दिव्य उन्माद था जब महाप्रभु जगन्नाथ जी से मिलते हैं पहली बार, और आसपास के लोगों ने सोचा है क्या व्यक्ति है ये, तो बेहोश हो गया, यहाँ पर शायद कोई पागल व्यक्ति है। जो वहाँ के बॉडी गार्ड्स थे, जो सिक्योरिटी चौकीदार थे, वो मारने वाले थे। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि ये कोई असाधारण व्यक्ति है। उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बेसुध, बेसुध मतलब हमारी तरह बेसुध नहीं, उनकी दिव्य उन्माद की अवस्था थी, प्रेम की एक्सटेसी की अवस्था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक छोटा सा एक कपास का टुकड़ा लेके उनके नाक के पास रखा और हल्का सा चलने देखते समझ गए कि अभी भी जीवित है। उनको अपने घर में ले गए और फिर उनसे बातचीत करने लगे होश आने पे, कि आप कौन हो, क्या नाम है, कौन आपके गुरु हैं। तो बताया मेरा नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, मैंने संन्यास लिया अभी अभी केशव भारती से। तो तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, भारती, केशव भारती, मैं आपको और ज़्यादा ऊंचे संप्रदाय में दीक्षा दूंगा। भारती निम्न श्रेणी का माना जाता है, मैं अपग्रेड कर दूंगा आपको और ऊंचे, क्योंकि भगवान को जानते नहीं थे। भगवान चैतन्य को ऐसे दिखा रहे थे कि वो एक साधारण व्यक्ति है, सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं समझ सकते। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के जो उनके पत्नी के जो भाई थे गोपीनाथ आचार्य, वो जानते थे भगवान, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को पहले नवद्वीप में मिल चुके थे, इसलिए भगवान के तत्व को जानते थे। तो गोपीनाथ आचार्य से बात करने लगे कि यह सन्यासी है, केशव भारती के द्वारा दीक्षित है। और तो गोपीनाथ आचार्य ने बताया कि यह भगवान है, आप इनको कैसे और ऊंचे स्तर पर ले जाओगे, भगवान के बराबर कुछ नहीं होता। मतलब पर तरंगानंद, नहीं भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान जो है उनका एक नाम है त्रियुगी, मतलब वो तीन युगों में प्रकट होते हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। कलयुग में भगवान प्रकट होते ही नहीं हैं। तो गोपीनाथ आचार्य समझाया कि त्रियुग का त्रियुगी का मतलब है चौथे युग में वो छन्न अवतार है, छन्न छिपे हुए अवतार है। भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं करते गौर अवतार में, कभी कभी करते हैं। जब महाप्रकाश लीला होती है उसमें भगवान सबको, भक्तों को बुलाते हैं, बोलते हैं मेरा अभिषेक करो, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मेरी स्तुति करो, मेरा गुणगान करो। और उस लीला में भगवान अपने सारे रूपों का दर्शन कराते हैं। मुरारी गुप्ता को राम अवतार दिखाते हैं, श्रीधर खोलावचा को कृष्ण बलराम दिखाते हैं, इसके पहले रामानंद राय को राधा कृष्ण का रूप दिखाते हैं, काशी को नरसिंह का रूप दिखाते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार में सारे अवतार आ जाते, सब अवतार सारे शिरोमणि। लेकिन ये बात सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वो सब चीज़ों को न्याय से समझने का प्रयास कर रहे थे, लॉजिकली, न्याय तर्क ये भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। और कभी कभी अगर इसे ज़्यादा आसक्ति है तो भक्ति में बाधा भी हो सकता है इसका, क्योंकि न्याय के द्वारा, तर्क के द्वारा भगवान के तत्व को नहीं समझा जा सकता। सारंग भट्टाचार्य चैलेंज करते हैं, भागवत में कहाँ दिया, भागवत से बताओ। तो भागवत का श्लोक है, कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्ण सांगोपांगाष्ट्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। तो श्लोक है, बताते हैं कि कृष्ण का वर्णन करते हैं, द्विष अकृष्ण, उनका कलर श्याम नहीं है बल्कि गौर है। संगोपांगाष्ट्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ है, नित्यानंद अद्वैत गदाधर, लेकिन फिर भी सारंग भट्टाचार्य नहीं समझ पाते। महाभारत से प्रूफ बताते, परसों भीष्मदेव का वर्णन कर रहे थे। भीष्मदेव जब महाभारत के युद्ध के बाद, भीष्मदेव अभी भी युद्ध के क्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटे हुए थे कई महीनों तक, इतने कष्ट में, इतने तीर थे कि दो तीरों के बीच में उंगली भी नहीं डाल सके, और ऐसी अवस्था में कई महीनों तक लेटे रहते हैं। हमारे में से कई हैं, अगर बिस्तर कंफर्टेबल नहीं है तो रात को नींद ही नहीं आती है ना। अब बाणों की शैया पर लेटे रहना, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये महानता है, वन कैन नो द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन, कष्टदायक स्थितियों को कैसे सहन करते हैं, ये महानता का लक्षण। तो भीष्मदेव लेटे हुए थे और युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, मैं राज्य पद को नहीं चाहता, धिक्कार है मेरे इस लोभ प्रवृत्ति को, धिक्कार है मैं कितना लोभी हूँ। स्वयं राज्य पद को प्राप्त करने के लिए मैंने 64 करोड़ लोगों की हत्या कराई। अब हम सब जानते हैं कि महाभारत में युद्ध का मेन कारण था दुर्योधन और शकुनी, इनका षड्यंत्र, इनकी लोभी प्रवृत्ति। पांडव तो इतने सहनशील थे, तितिक्षा कारुणिका सारे सद्गुण थे, वो राजा होकर 5 गांव लेने को तैयार थे, लेकिन दुर्योधन सुई के नोक के बराबर की जगह देने को तैयार नहीं था। फिर भी युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर सोच रहे हैं, मैं दोषी हूँ। ये एक वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव हमेशा अपने दोषों को देखते रहते हैं। अगर हम अपने दोषों को देखते रहेंगे तो दूसरों को दोष देखने का समय नहीं मिलेगा। जैसे PhD करनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए अपने स्वयं के दोषों पर कि मेरे कितने दोष हैं। हमेशा अपने दोषों को सोचने से नम्रता जागृत होती है। एक्चुअली फैक्ट है, कलयुग में हम सब के अंदर दोष हैं। कलयुग में प्रभुपाद जी बोलते हैं, कलयुग में हर व्यक्ति, एवरीबॉडी मोर और लेस जगाई मधाई, हर एक व्यक्ति जगाई मधाई की तरह। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि अब राज्य पद को स्वीकार करो, आपकी जिम्मेदारी है। युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार, अंत में भगवान श्री कृष्ण उनको कुरुक्षेत्र ले जाते हैं भीष्मदेव से मिलाने के लिए। भीष्मदेव लेटे हुए इंतजार कर रहे थे, उनको पता था भगवान मेरी सेवा को चाहते हैं। एक भक्त के जीने का उद्देश्य यही होता है कि भगवान की मैं क्या सेवा करूं, अगर सेवा नहीं है तो मृत्यु ज़्यादा अच्छी है, जिससे दूसरे सेंटर में जाकर सेवा कर सके। बस दो ही कार्य हैं हमारे अस्तित्व के, भगवान का नाम लेना और भगवान और उनके भक्तों की सेवा करना। बाकी क्या हमारे शरीर की अवस्था है, क्या हमारे मन की अवस्था है, क्या लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एक ही प्रश्न। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने अपने गुरु महाराज से एक ही प्रश्न पूछा हमेशा, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। और जो सतत ये प्रश्न पूछता है उसके सारे प्रश्नों का जवाब उसमें आ जाता है, क्योंकि सेवा के द्वारा भगवान के तत्व का ज्ञान हृदय में जागृत होता है। प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक बड़े माननीय व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, फाउंडिंग फर्स्ट व्यक्ति थे चांसलर, जब वो उनसे प्रश्न पूछने गए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप जरा पीछे जाके भगवान की सेवा करिए, बाद में प्रश्न पूछेंगे। तो पीछे जाके कुछ सेवा कर रहे थे, पूरा दिन बीत गया, और शाम के समय बोले, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूछा, आपके प्रश्न बताइए, बोले, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया मुझे। क्योंकि भक्ति बहुत गुह्य चीज़ है, हो सकता है कि आपके पास सारे शास्त्र सामने हो लेकिन समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आप शास्त्र पढ़े नहीं भी हों लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है वो समझ में आ जाए, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। जब गुरु प्रसन्न होते हैं एक शिष्य की सेवा से तो हृदय में ज्ञान को जागृत किया जाता है, अवेकनिंग रेवलेशन स्पिरिचुअल ट्रूथ जो है वो रिवील होता है, रिवील यानी प्रकट किया जाता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि गुरु कृपा से। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हैं उस समय, दान धर्म स्त्री धर्म राज धर्म सब कुछ बताते हैं और उनको समझाते हैं कि अब ये राज्य को स्वीकार कर, अब आप ये सब प्रजा आपके ऊपर निर्भर है, इनकी देखभाल करना आपका कर्तव्य है। और उस समय विष्णु सहस्त्र नाम भी बताते हैं उनको, जो विष्णु सहस्त्र नाम है भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उसमें 8 नाम ऐसे हैं जो चैतन्य महाप्रभु के तत्व का निरूपण करते हैं। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरंगश्चंदनागदो सन्यास कृच्छम शांत निष्ठा शांत परायणः। इंटरेस्टिंग है इसमें कोई कोई शब्द आज के श्लोक में भी आए हैं, शांत निष्ठा है। ये 8 नाम जो हैं ये महाप्रभु के बारे में हैं, महाभारत में दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हम गौड़ीय शास्त्र को नहीं स्वीकार करते, आप महाभारत रामायण या भागवत के आधार पर बताओ कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान हैं, तो महाभारत में ये 8 नाम आते हैं। और भी है, वायु पुराण में भी वर्णन आता है भगवान के नामों का। आदि लीला में प्रभुपाद पूरा लिस्ट देते हैं, 4 पेज का तात्पर्य, जिसमें अनेक शास्त्रों से बताया गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। सुवर्ण वर्ण गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, और कोई अवतार नहीं है जो सुनहरे वर्ण के। हेमांग के सुंदर अंग हैं। संन्यास कृतम भगवान संन्यास ग्रहण करते हैं, शांत निष्ठा शांत परायण। तो ये सब श्लोक जो है सर्वभट्टाचार्य को बताए जाते हैं, गोपीनाथाचार्य बताते हैं, फिर भी सर्वभट्टाचार्य कन्विंस नहीं होते। अंत में गोपीनाथाचार्य हाथ जोड़ देते हैं कि आपको सिखाना बेकार है, आपको ज्ञान देना ऐसा है जैसा बंजर भूमि में बीज डालना है, कुछ नहीं प्राप्त हो। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद सर्वभट्टाचार्य को कृपा मिलती है, सर्वभट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। ऑफकोर्स उनकी सेवा थोड़ा अलग टाइप की होती है, और महाप्रभु को बोलते हैं आपने संन्यास ले लिया 24 साल की उम्र में, कलयुग में आपने संन्यास ले लिया, ये बहुत खतरनाक है, इंद्रियां वश में नहीं होते, आपको सुदृढ़ करने के लिए मैं आपको ज्ञान दूंगा, भगवान को बोलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आप मेरे हित चिंतक हो, जो आप बोलोगे मैं सुनूंगा। 7 दिन तक जगन्नाथपुरी में श्वेत गंगा के पास में सर्वभट्टाचार्य के घर में महाप्रभु एक नम्र नौसुखिया भक्त की तरह, नए भक्त की तरह हाथ जोड़ के ज्ञान ग्रहण करते। हालांकि सर्वभट्टाचार्य महाप्रभु को ऊंचे आसन पर बिठाते हैं क्योंकि वो सन्यासी हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं लेकिन प्रवचन वो करते हैं कि मैं ज्ञान दूंगा, और महाप्रभु बहुत ध्यान से सुनते हैं लेकिन कुछ जवाब नहीं देते, कुछ पूछते नहीं हैं। सर्वभट्टाचार्य अंत में बुझीता कि न बुझीता, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर्वभट्टाचार्य के बातों को भगवान सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि मुझे सब समझ में आ रहा है, आपके श्लोक समझ में आ रहे हैं क्योंकि आपके श्लोक वेदांत सूत्र हैं, ये तो शास्त्र हैं, ये तो वेदव्यास के द्वारा रचे गए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपकी जो तात्पर्य है, आप जब उस पर अपना प्रकाश देते हो तो ऐसे कि जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाते, वेदांत सूत्र सूर्य की तरह है लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन बादल की तरह है, ये काफ़ी इंसल्टिंग लग सकता है। नहीं, कोई क्लास के बाद मुझे बोले प्रभु जी आज आपने पढ़ा वो श्लोक प्रभुपाद का तात्पर्य कितना अच्छा था लेकिन आपका क्लास जब ऐसा था कि सब ढक रहा था, इट्स वेरी इंसल्टिंग। सर्वभट्टाचार्य को थोड़ा मन में बुरा लगा, बोले ठीक है आप बताओ क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। और महाप्रभु ने फिर बताना शुरू किया, सर्वभट्टाचार्य बताने लगे, दोनों में काफ़ी देर तक तर्क हुआ। आत्मरामस्य मुनय निर्ग्रंथ अपि उरुक्रम, ये श्लोक के ऊपर सर्वमठाचार्य बोले आप चर्चा करो। और वो चर्चा करने के बाद फिर महाप्रभु ने अपनी व्याख्या दी और ये सब सुन के सर्वमठाचार्य का मन बदल गया, बोले कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, ये भगवान है। अब भगवान ने उनको अपना षडभुज रूप दिखाया, दो हाथ में धनुष बाण, दो हाथ में मुरली और एक हाथ में दंड और एक हाथ में कमंडल, षडभुज रूप। और अब सर्वमठाचार्य समझ गए कि भगवान, क्योंकि कृपा मिली। अथापि ते देव पदाम्बुज प्रसाद लेश अनुग्रह एव ही ज्ञानादि तत्व भगवन मही। जिस पर भगवान का अथापि ते देव पदाम्बुज प्रसाद, प्रसाद का मतलब है यहाँ कृपा, जब कृपा मिलती है तो ज्ञानादि तत्व, भगवान की कृपा के लिए तरसना चाहिए। वृंदावन वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी की कृपा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हम ब्रज में भिखारी के रूप में रहते हैं। इस कृपा को मांगने के लिए हमारे पूर्वज आचार्य, हमारे प्रमुख आचार्य श्रील रूप गोस्वामी हमें सिखाते हैं कि कैसे कृपा मांगनी चाहिए। राधे जय जय माधव दयिते, इस भजन के अंत में बोलते हैं करुणा करुमाई करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। हे श्रीमती राधिका वृंदावनेश्वरी श्यामा कृष्ण प्रिया, करुणा करो मेरे पर, दया करो मेरे पर, दया करो। अरे कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करो, ऐसे नहीं कि मैंने आज सुबह प्रार्थना कर ली अब कल तक प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं। कॉन्स्टेंटली प्रभुपाद हमेशा प्रार्थना करते रहते। इनफैक्ट एक बार एक डॉक्टर प्रभुपाद जी को बोल रहे थे कि प्रभुपाद आपके बीमारी का कारण ये कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, आप चैंटिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट भक्ति का मतलब है सतत। हम कहीं भागवत में पढ़ते नहीं है कि सिर्फ एक घंटा या दो घंटा, सतत। सततम कीर्तयन्तु मम, सताम प्रसंग मम वीर संवित, भगवान के सतत कॉन्स्टेंटली भगवान के विचारों में। या अगर बोल नहीं सकते सुनना, सुन नहीं सकते तो मनन करना, नहीं तो व्यवहारिक सेवा में लगे रहना। इस तरह से हम कृष्ण भक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। सर्वमठाचार्य के ऊपर कृपा हो गई और फिर वो इतने महान भक्त बन गए, उन्होंने तुरंत 100 श्लोक लिख लिए। सर्वम शतक, शतक शतक शब्द का अर्थ क्या होता है? शतक 100, यस। शायद आपने दूसरे प्रकार के शतक के बारे में सुना होगा जो क्रिकेट के शतक होते हैं, लेकिन ये शतक अलग है, सेंचुरी। 100 श्लोकास, कितने बड़े बुद्धिमान थे। अभी हमें एक श्लोक अगर कोई रचना करने के लिए बोले तो एक हफ्ता लग जाएगा। मुझे याद है जब मैं पहले स्कूल में 10वीं पास करने के बाद, 10वीं में को अच्छे नंबर मिले थे, मैं स्कूल में प्रथम नंबर था पूरे स्कूल में, तो इसलिए 11वीं में मुझे एक कविता कॉम्पिटिशन के लिए बुलाया। उनको लगा ये क्योंकि अच्छे नंबर मिले हैं तो एक कविता रचना करें, तो मुझे बोला कि आप कविता लिखो। तो मैं एक घंटा सोचता रहा, कुछ आया ही नहीं समझ में, मैं हरे कृष्णा मंत्र लिख कर आ गया। ये कविता रचने के लिए बुद्धि चाहिए होती, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 श्लोक लिख लिए। उसमें से प्रमुख श्लोक एक दो श्लोक हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा मुदिरतम अहम प्रपद्ये। भगवान गौरंग जो वैराग्य विद्या, विद्या और वैराग्य के युक्त भक्ति, भक्ति एकम्पनीड बाय नॉलेज एंड डिटैचमेंट, वो भक्ति सिखाने। इनफैक्ट अगले दिन जब महाप्रभु सर्वमठाचार्य के घर में गए, सुबह सुबह मंगल आरती के बाद प्रसाद लेके गए, जब नौक किया सर्वमठाचार्य सो रहे थे, जैसे ही नौक किया भट्टाचार्य उठे और उठते ही बोले कृष्ण 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 कृष्ण। और महाप्रभु जब अंदर प्रवेश किए और महाप्रसाद दिया उनको, तो सर्वमठाचार्य ने तुरंत प्रसाद मुंह में डाल दिया, ग्रहण कर लिया। महाप्रभु बोले भट्टाचार्य आप तो बड़े पंडित हो, ब्राह्मण हो, और आपने मुंह भी नहीं धोया, दांत भी साफ नहीं किए, ये क्या विधि है? सर्वमठाचार्य बोले कि नहीं, महाप्रसाद, उन्होंने पुराण से एक श्लोक बताया कि महाप्रसाद जब आते हैं, चाहे वो दूर से आया हो चाहे वो सूख गया हो, उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है, तुरंत खाना है। और महाप्रभु बोले आज मेरा जगन्नाथ पूरी आना सफल हो गया, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रसाद में श्रद्धा जागृत हुई और भगवान के नाम में महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे। मैंने एक बार एक कार्यक्रम में पूछा कि ये श्लोक का अर्थ क्या है, महाप्रसादे गोविंदे, किसी को मालूम है इसका अर्थ? एक डिवोटी ने जवाब दिया इसका मतलब है प्रसाद रेडी हो गया है। इसका मीनिंग क्या है? महाप्रसाद में, गोविंद में, नाम में, ब्राह्मण में और वैष्णव में जिसके पुण्य बहुत कम है उसको इन चीज़ों में श्रद्धा नहीं होती। महाप्रसाद में श्रद्धा होना, हरि नाम में श्रद्धा होना, वैष्णव में श्रद्धा होना, ये आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। प्रसाद भी श्रद्धा से लेना कि कृष्ण ने इसको स्वीकार किया। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु अंत्यलीला में बोलते हैं जब जगन्नाथपुरी का प्रसाद खाते समय कि इसमें क्या विशेषता है, ये उन्हीं सामग्री से बना हुआ है, ये वही चावल है, वही मसाला है, वही नमक है, वही क्या विशेषता क्या है? और फिर वो बताते इसकी विशेषता है कृष्ण अधरामृत, कृष्ण के अधर से जो अमृत है, द नेक्टर ऑफ कृष्णस लोटस लिप्स, उनके होठों का कृष्ण के सलाइवा से मिक्स हुआ है, इसीलिए वो इतना टेस्टी है। तो साधारण नहीं मानना चाहिए, हालांकि हमारी इंद्रियां उतने एडवांस हैं शायद हमें पता नहीं चलेगा टेस्ट में अंतर, लेकिन हमें बुद्धि के स्तर पर समझना है कि ये कृष्ण है। श्रद्धा, विश्वास, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है तर्क वितर्क से। इसलिए प्रभुपाद जी एक लेटर में, एक माता जी प्रभुपाद के डिसाइपल हैं जिनका नाम है माधवी लता माता जी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा कि प्रभुपाद मैं तो बहुत सरल सेवा कर रही हूँ, मेरी ज़्यादा अच्छी महत्वपूर्ण सेवा नहीं है, मैं उतनी बुद्धिमान नहीं, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद जी जवाब दिया, योर सिंपल नेचर इज़ वेरी फेवरेबल फॉर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपकी जो सरल भक्ति भावना है वो भगवान की प्रगति में बहुत लाभदायक है, बहुत आसान है। टू मच इंटेलिजेंस एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता और कृष्ण भक्ति ये दोनों साथ साथ नहीं हो पाते, क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमत्ता होने से कई बार हम हर एक चीज़ का विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करना अच्छा है लेकिन उसके ऊपर जानना चाहिए कि गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा सर्वोपरि। एक व्यक्ति थे जो प्रभुपाद के ही पुस्तकों को पढ़ रहे थे लेकिन उसमें दोष देखने लगे और फिर बाद में वो मूवमेंट से अलग हो गए, है ना। टू मच एरुडिशन, बहुत ज़्यादा विद्वता भी भक्ति में बाधक हो सकता है, हर बार होगा ऐसा नहीं है लेकिन हो सकता है। प्रभुपाद बोलते हैं एक आगे माधवी लता माता जी के पत्र में कि बेटर टू बी डल इन मटीरियली एंड एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भौतिक दृष्टि थोड़ा सा मूर्ख बने रहना अच्छा है, और उदाहरण देते हैं जड़ भरत का। जड़ भरत, आप सबने कथा पढ़ी है भागवत में, जो पहले भरत महाराज थे, फिर वो हिरण से आसक्त हो गए, अगले जीवन में हिरण बन गए, और हिरण बनने के बाद उनको याद था कि मैंने गलती की थी, अब वो बहुत सावधान रहते थे, और फिर तीसरे जन्म में वो जड़ भरत बने। और जड़ भरत के रूप में जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते कि कोई उनको आदर नहीं देता, कोई उनको गंभीरता से नहीं देता, तो ये क्या, ये कौन है, ये जड़ मूर्ख व्यक्ति है, कोई अटेंशन नहीं देता, और जानबूझकर गलत कार्य भी करते। कभी कभी जैसे हम शौच क्रिया के बाद हाथ धोते हैं, और पहले हाथ धोते फिर शौच क्रिया के ले जाते, तो लोगों को लगता है क्या है ये व्यक्ति। और एक बार तो वो जा रहे थे और राजा रहुग्न उनकी पालकी में जा रहे थे, और चार लोग पालकी उठा रहे थे, उसमें से एक कोई व्यक्ति चला गया था, तो ढूंढ रहे थे कौन है हष्टपुष्ट मोटा व्यक्ति, और भरत, जड़ भरत को देखा, बोले आप उठाओ पालकी। जड़ भरत का स्वभाव क्या था, जो भी कोई बोले बस हाँ कर लेना, कोई मारे, कोई पीटे, कोई प्रशंसा करे, बस जड़ रहना, नो रिस्पॉन्स बस। तो पालकी उठा रहे थे, और लेकिन वो बहुत सेंसिटिव थे कि मुझे राजा की सेवा करनी है, लेकिन भगवान तो राजा के हृदय में भी है, चींटी के हृदय में भी है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि राजा की सेवा के लिए चींटी की हत्या करूँ। तो आगे चल रहे थे और सामने कोई चींटी को देखते रुक जाते, और बाकी तीन व्यक्ति आगे जा रहे थे और एक व्यक्ति रुक गए, तो तुरंत है ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल, राजा को ऐसे छलांग, उनकी पालकी थोड़ा हिल रही थी, बोले क्या हुआ, कौन है ये मूर्ख? तो सबने बताया हम तो ठीक उठा रहे हैं लेकिन ये जो नए व्यक्ति आए हैं, तो महाराज रहुगुण डांटने लगे भरत महाराज को, जड़ भरत। एक्चुअली हम भक्ति में भी अगर किसी को देखते हैं कि अगर उसके भौतिक दृष्टि से कोई कमियां हैं तो डांटने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि हो सकता है वो भी इस तरह के कोई महात्मा हो जो पूर्व जन्म में बहुत आगे बढ़े हों। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न भुजाया, वैष्णव की क्रिया को समझना मुश्किल है, हो सकता है शारीरिक दोष के कारण हो सकता है जानबूझ कर हो। कभी कभी महाप्रभु के भी पार्षद, जैसे एक पार्षद थे जो मीनकेतन रामदास, बहुत मजाक करते थे। जब कोई व्यक्ति उनको प्रणाम करता, वो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, जब कोई प्रणाम करता तो प्रणाम करने वाले के पीठ पर जाके बैठ जाते, पंचकल्प तरुण कृपा सिंधु भेवे। तो उसके कारण गुणानव मिश्र उनके प्रति अपराध कर रहे थे। गुणानव मिश्र सोच रहे थे ये कौन है, ये नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, मैं तो गौरंग का पार्षद हूँ, मैं नित्यानंद के ग्रुप को रिस्पेक्ट नहीं करता। उसके कारण उनका पतन हो गया। उनके भाई कविराज गोस्वामी ने समझाया कि ये ठीक नहीं है कि आप एक का आदर कर रहे हो दूसरे का नहीं कर रहे। तो राजा रहुग्न इस तरह डांटने लगे और जब जड़ भरत ने बोलना शुरू किया तब वो समझ गए कि ये महापुरुष है। वैष्णव को पहचाना जाता है उसके वाणी से, उसके शरीर से, आकार से और उसके बाकी भौतिक आचरण से नहीं। जब वैष्णव बोलते हैं तो उनके वाणी में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है। तो वैष्णव के मुख से कृष्ण प्रकट होते हैं और वो जो वैष्णव की वाणी होती है वो हृदय का मार्जन करने वाली। इसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आइक्य आर न कोरी हो मने आशा। मेरी एक ही इच्छा है कि गुरु के मुख से जो वाणी निकल रही है वो मेरे चित्त का मार्जन कर दे। तो बाद में यही भरत महाराज रहुग्न को ज्ञान देते हैं। पूरा एक अध्याय है श्रीमद् भागवत का, पूरा एक अध्याय है रहुग्न महाराज जड़ भरत रहुग्न को ज्ञान दे रहे हैं। और बाद में एक और गिरोह होता है, गैंग, जो डाकुओं का गैंग होता है, जिनका काम होता है वो लोगों को पकड़ के जबरदस्ती काली माता को ऑफरिंग कर दें। अगर वो काली के इतने शुद्ध भक्त हैं तो क्यों ना अपने आप को ही ऑफरिंग कर दें, नहीं? अगर वो सही में करना चाहते हैं तो वो जड़ भरत को देखते हैं। एक्चुअली उन्होंने किसी को ऑफरिंग के लिए मारने का योजना थी और वो व्यक्ति भाग गए, तो ढूंढ रहे थे और कौन व्यक्ति होगा, तो जड़ भरत को पकड़ लेते। और जड़ भरत मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। हे कृष्ण आप मुझे मारना चाहो तो मारो, रक्षा करना चाहो तो रक्षा करो, कंप्लीटली डिटैच्ड हर स्थिति में। अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा मुनि ने वो भयानक राक्षस पैदा किया उनको मारने के लिए, दुर्वासा अम्बरीश महाराज हिले भी नहीं अपनी स्थिति से, और ऐसे भी नहीं कि दो फीट पीछे हट जाएं, थोड़ा भागने का प्रयास करें। कृष्ण सब कुछ कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की इच्छा बिना कुछ होना ही नहीं है। बस हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे, भयानक युद्ध हो रहा है, द्वितीय महायुद्ध 1940 से जापानीज सोल्जर बॉम्बिंग कर रहे हैं और सब जगह पे साइरेंस जा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, और प्रभुपाद प्रेम से कचौड़ी बना रहे राधा गोविंद की। सोच रहे हैं कि ये भी कृष्ण है कि केशव धृता बॉम्ब शरीर है, बॉम्ब भी कृष्ण, कृष्ण इज कमिंग, फियरलेसनेस। इसलिए आज के तात्पर्य में लिखा है कि जो भगवान में विश्वास करता है वही निडर हो सकता है। तो जड़ भरत को ले जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, उनको अच्छा भोजन कराते हैं, वो सब ग्रहण। जैसे काली माता के पास तलवार लेके मारने जाते हैं तो काली माता सहन नहीं कर सकती, वैष्णवी है वो, भगवान के शुद्ध भक्त है, कैसे सहन कर सकती है कि भगवान के एक भक्त का प्राण लिया जा रहा है उनके लिए, उसमें से ऑल्टर से बाहर आ जाते अपने पार्षदों के साथ और जितने भी डाकू होते हैं सबको मार देते हैं, और उनको मार के उनके जो हेड होते हैं मुंडे को लेके ऐसे खेल रहे होते हैं। ये जो विग्रह है भद्रकाली, आप में से किसी ने देखा है ये भद्रकाली मंदिर? ये कुरुक्षेत्र में है, आज भी वो मंदिर है जो जड़ भरत की रक्षा की थी जिस डीटी ने, इसको शक्ति पीठ बोलते हैं। भारत में 51 स्थान हैं कि जब हम कहानी सुनते हैं कनखल में जब दक्ष का यज्ञ भंग हुआ था, सती देवी ने अपने शरीर को अंत कर दिया था। तो भगवान शंकर जी देवी के देह को लेकर बहुत देर तक नृत्य कर रहे थे। अब भगवान विष्णु ने अंत में चक्र से के शरीर के अलग अलग भाग कर दिए और वो भाग अलग अलग स्थानों में गिरे, 51 भागों में। अभी मैं कुछ दिन पहले आसाम गया था, कामाख्या, वहाँ पर भी देवी का एक स्थान है, कुरुक्षेत्र में भी एक स्थान है, ऐसे अलग अलग स्थान। तो ये भद्रकाली मंदिर अभी भी है कुरुक्षेत्र में। और कुछ लोग बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी कुरुक्षेत्र गए थे, हालांकि ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सम ओपिनियंस लॉर्ड चैतन्य विजिटेड कुरुक्षेत्र, महाप्रभु कुरुक्षेत्र गए थे और थानेसर नाम के स्थान में एक ब्राह्मण के घर में गए थे। तो जड़ भरत पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जानबूझकर सेवा को छोड़ के जड़ बन जाएं। कोई कहे प्रभु जी आपको प्रसादम भोग बनाने भगवान के लिए, नहीं मैं तो जड़ हूँ कुछ नहीं करना। कोई बोले प्रभु जी अभी साउंड सिस्टम सेटअप करना है वृंदावन विहारी प्रभु, नहीं नहीं मैं तो, मेरे को नींद आई है, मैं जड़ हो गया। हमें अपनी सेवा के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हमेशा जानना चाहिए कि मैं भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर हूँ। अभी अगले सप्ताह नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है, इसलिए कल शाम को और आज शाम को मैं प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ रहा था। उस प्रार्थना में से एक भाग आज मैं एक नया भाग शुरू करने वाला था, मैं शाम के समय डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन अब 10-15 मिनट बचे हैं। ये वो भाग है जब प्रहलाद महाराज भगवान को प्रसन्न करते हैं। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान इतने गुस्से होते हैं कि कोई उनको प्रसन्न नहीं कर पाता। ब्रह्मा, शिव, वेताल, नाग, चारण, सिद्ध, वैतालिक सब आके स्तुति अर्पण करते हैं, लेकिन भगवान का क्रोध। अंत में लक्ष्मी देवी को बोलते हैं, लक्ष्मी देवी बोलती है ये तो बड़े विचित्र हैं, इनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा। अंत में ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रहलाद आप आगे जाओ, और प्रहलाद बहुत नम्रता से भगवान के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अब भगवान नरसिंहदेव अपने हस्त कमलों से उनके सिर के ऊपर स्पर्श करते हैं, उनके स्पर्श करते ही प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑल मटीरियल कंटेमिनेशंस वैनक्विश्ड, जितने भी भौतिक कलमश थे दूर हो जाते। भगवान के संपर्क में आने से सारे अशुद्धियाँ दूर हो जाती। या तो भगवान हाथों से स्पर्श करें हमारे सिर के ऊपर, या हर रोज हमारे साथ 2 घंटे तक भगवान हमारी जीवा को स्पर्श कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी तरीके से श्री कृष्ण या श्री कृष्ण का नाम या उनके रूप इसके संपर्क में रहना चाहिए, इससे अपने आप शुद्धिकरण हो जाता। अघासुर ने तो कोई साधना नहीं की, जहाँ तक मैंने सुना अघासुर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम में भी नहीं आए, लेकिन अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिल गई क्योंकि भगवान के संपर्क में आए, उनकी जीवा के ऊपर भगवान गए, उनके मुंह के अंदर। पूतना ने तो कोई अच्छी सेवा नहीं की, उसने दूध दिया जहर के साथ, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, भगवान इस तुच्छ सेवा को भी स्वीकार कर रहे थे। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। तो जब प्रहलाद को स्पर्श किया, प्रहलाद भगवान के पास आके प्रार्थना अर्पण करने लगे, और पहला श्लोक उन्होंने बोला ब्रह्मा दया सुरगना मुनयात सिद्ध, बोल रहे हैं कि ब्रह्मा दया सुरगना मुनयात सिद्ध सत्वय कतन गतयो वचसं प्रवाह। ब्रह्मा, शिव और देवता ये सत्व गुण में हैं, ये बड़े बड़े देवता ये आपको प्रसन्न नहीं कर सके, और मैं उग्र जात, मैं एक असुर परिवार में जन्मा हूँ, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता, मेरी कोई योग्यता नहीं, आई एम टोटली अनक्वालिफाइड। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये पहला गुण है वैष्णव का। वैष्णव को अगर जानना है तो पहला शब्द ये होगा कि त्रिणादपि सुनिच्छे, आई एम द मोस्ट फॉलन। प्रभुपाद 2 उदाहरण देते हैं यहाँ पर, एक कविराज गोस्वामी का। कविराज गोस्वामी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है श्री चैतन्य चरितामृत, और वो क्या कहते हैं अपने बारे में, जगाई मदाई है ते मुई से पापिष्ट, पुरुषे रखित है ते मुई से लगिष्ट। आई एम लोअर देन जगाई एंड मदाई, मैं जगाई मदाई से भी ज़्यादा पतित हूँ और विष्टा में पड़े हुए कीड़े से भी गिरा हूँ। जो मेरा नाम लेगा वो पापी हो जाएगा और जो मेरा नाम सुनेगा उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अ वैष्णव शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रहलाद महाराज एंड शुड थिंक लाइक दिस। हम सब वैष्णवों को प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों में चल के अपने आप के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि मैं तुच्छ हूँ। वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हिज वैष्णव क्वालिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, हम अपने वैष्णव गुणों का अभिमान करते हैं कि हमें ये अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत नम्र हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन, अगर हम अभिमान है कि मैं नम्र हूँ तो हम नम्र नहीं रहे। और लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अनलेस वन इज मीक एंड हम्बल टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। जब तक व्यक्ति नम्र नहीं होता आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई भक्त जो भक्ति में सीनियर हो जाते हैं तो सीनियर होने के बाद अभिमान बढ़ जाता है, ये भी डेंजर है। हम पहले पहले भक्ति में आते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबके अच्छाई देखते हैं, फिर थोड़े समय बाद हम सीनियर हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैंने भी दुनिया देखी है, मेरे को 10 साल हो गए, मैं जान रहा हूँ इसके क्या क्या लीलाएँ हैं, दूसरों के दोष देखने लगते हैं। तो हम कितने भी सीनियर हों हमें सोचना चाहिए कि मैं नया भक्त हूँ, आज पहला दिन है मैं राधा श्याम सुंदर के मंदिर में आया हूँ, सब मेरे से अच्छे हैं, सब मेरे लिए पूजनीय हैं। जो व्यक्ति ने वृंदावन धाम में प्रवेश भी किया तो राधा रानी की कृपा से आए हैं, ये सब राधा रानी के पार्षद हैं, श्याम सुंदर के सेवक हैं और मैं इनके सेवकों का सेवक हूँ। जैसे यहाँ पर ब्रज में एक भक्त रहते थे घनश्याम बाबा महाराज, जो कोई व्यक्ति आता वो बोलते थे, यू आर फ्रेंड ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, यू आर फ्रेंड ऑफ कृष्णा, आप कृष्ण के मित्र हो और मैं कृष्ण का दास हूँ, तो आप ज़्यादा भगवान को प्रिय हो, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इज वैष्णव वैकुंठ वर्ल्ड। वैकुंठ मीन्स एवरी डिवोटी शुड थिंक दैट एवरी अदर डिवोटी सर्विस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन माई सर्विस। ये सोचना कि हर एक दूसरे भक्त की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी सेवा से। उसको फैसिलिटी मिले, मुझे नहीं मिले कोई बात नहीं, उसको अगर प्रसाद की कमी है तो उसको मिले, मुझे नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं दूसरों के चरणों में रहूं। ये सब प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। इसके बाद भगवान नरसिंहदेव उनको बोलते हैं, प्रहलाद मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ, मांगो वरदान, कुछ वरदान मांगो। और प्रहलाद बोलते हैं, प्रभु आप मुझे डू नॉट ट्राई टू अल्यूर मी, मेरे को लोभी मत बनाओ, मेरे को भ्रमित मत करो ये गलत गलत उपहार देके। मैं बहुत डरता हूँ भौतिक चीज़ों से, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं संसार चक्र से बहुत डरता हूँ। तो ये डर बहुत अच्छा है, ये डरना चाहिए कि कहीं मैं माया में नहीं गिर जाऊँ, ये डरना चाहिए कहीं मैं कृष्ण को भूल नहीं जाऊँ, ये डरना चाहिए कहीं मैं वैष्णव का अपराध नहीं कर बैठूँ। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ मटीरियल कंडीशन, देयरफॉर आई हैव कम टू योर लोटस फीट। मैं डर रहा हूँ माया से। प्रभुपाद लिखते हैं एक लेक्चर में, बोलते हैं, वन शुड हैव अ हेल्थी फियर ऑफ माया। माया से डरना बहुत अच्छा है, जिससे हम फिर कृष्ण को सच्चे दिल से पुकार सकें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे प्रभु आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, मेरे हृदय में कामनाओं की बीज बहुत ज़्यादा है। हे प्रभु एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, यदि दास्यसी मे कामान, बोली वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृद संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। ओ माय लॉर्ड, ओ बेस्ट ऑफ द गिनर ऑफ बेनेडिक्शन, इफ एट ऑल यू वांट टू बिस्टो अ डिजायरेबल बेनेडिक्शन ऑन मी, देन आई प्रे फ्रॉम योर लॉर्डशिप दैट विद इन द कोर ऑफ माय हार्ट देयर बी नो मटेरियल डिजायर। हे भगवान के लिए शब्द यूज किया है वरद ऋषभ, ऋषभ बोलते हैं बेस्ट को, वरद ऋषभ मतलब वरदान देने वालों में सबसे अच्छे। साउथ इंडिया में एक मंदिर है जहाँ भगवान के डीटी का नाम है वरदराज स्वामी, आप में से किसी ने देखा है मंदिर कांचीपुरम है ना, वरदराज स्वामी। ये विग्रह जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के बीच में से डीटी प्रकट हुए थे, और रामानुजाचार्य के परंपरा के भक्त अभी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान का नाम है वरदराज या वरदर्षभ। अगर आपको देना ही चाहते हो तो क्या दो कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहे। अभी नरसिंह चतुर्थी आ रही है अगले सप्ताह, आज 2 तारीख है, मतलब अगले मंगलवार है ना, 9 तारीख, एग्जैक्टली 1 सप्ताह है। तो 7 दिन जो हमारे पास है, आप प्रयास करिए कि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, ये दोनों अध्याय में प्रहलाद की प्रार्थनाएँ दिए गई, इनको आप पढ़िए और गहराई में समझने का प्रयास करिए जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट के अनुवाद किया। क्योंकि प्रहलाद के शब्दों को सुनने से हम नरसिंह भगवान को समझ सकते हैं, प्रहलाद की कृपा से ही भगवान नरसिंह देव की कृपा मिल सकती है। इनफैक्ट कल मैं गौर गोविंद महाराज का एक लेक्चर पढ़ रहा था, गौर गोविंद महाराज बोलते हैं, एक पुराण से बताते हैं कि पहले प्रहलाद की पूजा करनी चाहिए फिर नरसिंह भगवान की, पहले प्रहलाद को प्रणाम करना चाहिए फिर नरसिंह भगवान की। क्योंकि प्रहलाद आह्लाददायिनी, जो भगवान को आनंद देने वाले, प्रहलाद ये नाम भी वैसे रखे थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्य मतलब सोना और कशिपु मतलब बिस्तर, उसके दो ही इंटरेस्ट थे लाइफ में, अच्छा बिस्तर और अच्छा सोना, है ना, एक तो सोना यानी धन और बिस्तर पे सोना बस। तो प्रहलाद के पदचिन्हों में चलना, ये तरीका है भक्ति में सफलता प्राप्त करने का। महाजन ये न गता स पंथ, प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान को कि प्लीज़ ब्लेस मी दैट आई हैव नो मेटीरियल डिज़ायर। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का पहला, चैतन्य महाप्रभु का श्लोक कोट करते हैं, चैतन्य शिक्षाशास्त्र में कौन सा श्लोक है जहाँ पर ऐसा ही कुछ वर्णन किया गया जैसे प्रहलाद बता रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वई। हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा चाहिए बर्थ आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पर आज के श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसको आपकी कृपा मिल जाती है उसको सारा संसार व्यर्थ नज़र आता है। प्रबोधानंद सरस्वती जो महाप्रभु के वेंकट भट्ट के पिताजी के भाई थे, वो बताते हैं कि कैवल्य नरकायेत त्रिदश पूर आकाश पुष्पायेत, जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाती है उसको कैवल्य भगवान में लीन होना वो नरक के समान लगता है। त्रिदश पूर यानी जो स्वर्ग के लोक के सुख भी हैं वो ऐसा लगता है जैसे आकाश पुष्प हो। आकाश पुष्प मतलब आकाश के फूल कौन से कलर के होते हैं, या घोड़ा डिम्ब बोलते हैं, घोड़ा डिम्ब है संसार का सुख क्या है, घोड़ा डिम्ब, घोड़ा डिम्ब घोड़े के अंडे, घोड़े के अंडे कौन से कलर के होते हैं, होते ही नहीं है, यस तो काल्पनिक है। सुनिए, किसी को 10 लाख रुपए मिलने, 10 लाख घोड़े के अंडे मिल गए तो झगड़ रहे हैं लोग घोड़ा डिम्ब के लिए। ये संसार व्यर्थ लगता है किसको, जिसको महाप्रभु की कृपा मिली है, और कृपा नहीं मिली है तो ये सब कुछ लगता है। तो हम जान सकते हैं कि हम कितनी कृपा मिली है, कि कितना हम संसार से विरक्त हो गए हैं। आर कबे निताई चंदेर करुणा हुईबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे, जब संसार भोग की इच्छा नष्ट हो जाती है ये सबूत है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली है। और यही बात प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हे प्रभु कि आप मेरे को कुछ लोभी मत करिए, मेरे को सिर्फ आपकी सेवा दीजिए। अहम तुम आकमस्त्वद भक्तस, मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हों, बस यही मैं चाहता हूँ, आप मेरे प्रभु बने रहें मैं आपका दास बना रहूं, हमारा और कोई रिलेशनशिप नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु वही चीज़ कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वभाव है कृष्ण के दास, गोपीर भर्तूर पद कमलयोर दास दास अनुदास। भगवान शंकर जी क्या बोलते हैं पार्वती को, आराधनम सर्वेशम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चनम। आराधनम सर्वेशम, सब प्रकार की आराधना में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु या कृष्ण की आराधना, लेकिन उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की सेवा करना। और अंत में प्रहलाद महाराज अपने प्रार्थनाओं में भगवान को बोलते हैं, हे प्रभु एक सेवक अगर सेवा करता है बदले में कुछ प्राप्त करने के लिए, वो सच्चा सेवक नहीं है। और अगर मालिक सेवक को कुछ दे रहा है बदले में तो असली मालिक नहीं है। सच्चे सेवक का मतलब है बदले में कुछ मांगना नहीं, सिर्फ सेवा करने की और अवसर मिले। जैसे किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी ये हरे कृष्णा चैंटिंग से क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस चैंटिंग, प्रभुपाद जी बोले मोर चैंटिंग, ये नाम लेने से क्या फल मिलेगा और नाम लेने की इच्छा बढ़ेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभु प्रहलाद महाराज बोलते हैं अगर मैं आपकी सेवा करूं और बदले में कुछ मांगूं तो वो है वानिक, वनिक, वनिक किसको बोलते हैं, वनिक बनिया, ये बिजनेस हो गया। जैसे आप स्टेशन पे जाओगे कुली बोलेगा कोई सेवा करूं सेवा करूं, इसका मतलब बाद में वो क्या मांगने वाले, पैसे, या पैसे नहीं लेगा तो शायद लगेज ही ले जाएगा आपका, है ना, कोई फ्री में सेवा नहीं करता। लेकिन हमारे कृष्ण के भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने सब इतने सारे भक्तों को कृष्ण भक्ति में ले आए, सबसे बड़ी सेवा चैतन्य महाप्रभु की सेवा प्रभुपाद ने की। लेकिन बदले में प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने आपको दिया है वो आप दूसरों को वितरित करो, जो प्रभुपाद जी ने हरि नाम दिया है वो हम सबको बांटे। एक बार एक छोटे बच्ची ने प्रभुपाद से पूछा हाउ कैन आई प्लीज यू प्रभुपाद, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूँ। प्रभुपाद हंसे और बोले यू वॉन्ट टू प्लीज मी, अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो हमेशा कृष्ण का नाम लो, चैंट हरे कृष्णा 24 hours a day, हमेशा गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और भी कुछ श्लोक हैं, मैं शाम के समय जो आज 5 से 7 बजे लेक्चर्स में कंटिन्यू करूँगा। आप सब भक्त मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों में चल के भगवान की शुद्ध सेवा कर सकूँ।